shanti.
Ach. Amrit vilisihi. Mammade ki smriti me. हम सभी खोए हुए हैं, मातेश्वरी जी के जीवन के अनेकानेक प्रसंगों को हमारी आदरणीय संतोष दीदी के द्वारा मुरब्बी भ्राता रमेश जी के द्वारा निर्वैर भाई जी के द्वारा दादी जी के द्वारा साथ के और सन्मुख के अनुभवों को सुन करके हम सभी काफी हद तक प्रेरित हुए हैं मातेश्वरी जी के जीवन से। और जब ऐसा सुनेंगे तो क्यों नहीं हमारे दिल में भी यही भाव उठेगा कि अध्यात्म के मार्ग पर जो ब्रह्मा बाप ने किया, जो मीठी माँ ने किया, माँ बाप के कदमों पर चलकर अध्यात्म जीवन की ऊंचाइयों को सर करें और उन ऊंचाइयों के द्वारा अध्यात्म की प्राप्तियों को जीवन में अनुभव करें। कोई भी इमारत बनती है तो इमारत का फाउंडेशन दिखाई नहीं पड़ता है, इमारत दिखाई पड़ती है, लेकिन फाउंडेशन हमेशा गुप्त होता है। कोई भी बहुत बड़े से बड़ा कार्य हो जाता है लेकिन उस कार्य के कोई प्रेरक बल होते हैं जिनकी प्रेरणाओं से कार्य संपन्न होता है। तो ये भी एक सोचने की बात है कि बाबा मम्मा के जीवन में जो इतनी दिव्यता को देखा, इतनी पवित्रता को देखा, इतने अनगिनत विघ्नों के बाद भी सफलता के शिखरों को सर करके आज ईश्वर का यज्ञ, ब्रह्मा बाप का यज्ञ पूरे विश्व में कोई कोना बाकी नहीं, पूरे विश्व में बाप दादा का नाम पहुंच चुका है, लोगों को मालूम हो चुका है। ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन के बारे में लोगों के दिल में एक सम्मान की भावना प्रकट हो चुकी है। तो स्वाभाविक है कि हम जो मम्मा बाबा के आध्यात्मिक रचना है, हमारे कदम भी उस ओर ही बढ़ रहे हैं। जिस ओर माँ बाप बढ़े और मार्ग प्रदर्शना की, हमने देखा कि मम्मा के जीवन में बाप और दादा दोनों के आदेश को पालन करने में बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। मम्मा की जीवन का सफलता का रहस्य ही ये था कि चाहे बाबा ने मुरली के माध्यम से कहा, चाहे बाबा ने सन्मुख ही कहा, या चाहे बाबा का इशारा ही मिला, लेकिन बाप का कहना और मम्मा का करना, अंदर की यही गहरी धारणा से कि हुक्मी हुक्म चलाए रहा है। लेकिन ये आज्ञा पालन संभव कैसे हुई? इसके फाउंडेशन में कौन सी मूल धारणाएं रही, जिस मूल धारणाओं के कारण मातेश्वरी ऐसी आज्ञाकारी बन करके चली? मातेश्वरी के जीवन में, या चाहे ब्रह्मा बाप के जीवन में, सबसे पहला जो मूल्य है निश्चय, गहरा निश्चय था कि ये स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान, ये भगवान का कार्य है। और परमात्मा के हर आदेश पर निश्चय होने के कारण, जिसमें निश्चय होता है उसके कहने पर चलना सहज हो जाता है। और न केवल परमात्मा का निश्चय, लेकिन स्वयं स्वयं की आत्मिक शक्ति के अंदर भी इतना गहरा विश्वास और निश्चय। वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकती है जो स्वयं स्वयं की आज्ञा पालन कर सके। मैं चाहूं और मैं नहीं करूं तो ये मेरी स्वयं से बेवफाई है। मैं कोई अच्छे अपने सपनों को सजाती हूं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना चाहिए, मैं अवश्य ही करूंगी, और फिर किसी छोटे मोटे बहानों के कारण, बहानों का आधार लेकर के मैं जब ये कहती हूं कि मैं चाहती तो थी करना तो चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि ये क्योंकि या लेकिन स्वयं को धोखा देना हुआ। अध्यात्म के मार्ग पर सफल होने वाले लोगों के जीवन में आत्मनिश्चय, स्वयं का स्वयं में निश्चय, परमात्म निश्चय, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, ये बहुत भली भांति स्पष्ट होता है कि मैं क्या करने जा रही हूं, मैं क्यों करने जा रही हूं और उसका परिणाम कितना श्रेष्ठ है। जीवन में निश्चयात्मक बुद्धि आज्ञा पालन की ताकत देता है। अगर हमें माँ बाप जैसा बनना है तो हमें अपने आप में, हमें बाबा में, ईश्वरीय कार्य में और इस परिवार के अंदर एक गहरा निश्चय होना जरूरी है। हम कौन हैं? हम किसके हैं? हम किस लिए हैं? अब हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल गई है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले हम सफल साधक हैं। निश्चयात्मक बुद्धि, ये पहला लक्षण हम हरेक में होना जरूरी। दूसरा, बाबा की मुरली, मुरली में जो श्रीमत मिलती है वो श्रीमत को समझने की गहरी लगन, बाबा का मुरली का एक एक वाक्य लाखों रुपयों से अधिक मूल्यवान। और बाबा ने हर बात के लिए श्रीमत दी है। जिस श्रीमत का मूल्य मम्मा बाबा और आज हमारी दादियों को इतना अधिक है, जब उनके जीवन के नजदीक हम आते हैं, जब उनकी धारणाओं को हम अनुभव करते हैं, तब हमें मालूम चलता है श्रीमत की ऊंचाई कितनी है, श्रीमत की महीनता कितनी है, श्रीमत की दूरदर्शिता कितनी है। और हमें वो श्रीमत मिल रही है। दुनिया में हर क्षेत्र में निष्णात होते हैं, जिसे कंसल्टेंट कहा जाता है, होता है ना? और कंसल्टेंट की फी कितनी भारी होती है, चाहे वो किसी क्षेत्र के कंसल्टेंट हैं, इनकम टैक्स के हैं या सेल टैक्स के हैं या मेडिकल के हैं, कोई भी हैं, वो अपने क्षेत्र की सलाह सूचन देते हैं जिस पर लोग चल पड़ते हैं। कंसल्टेंट की एडवाइस पर श्रद्धा रख करके चल पड़ते हैं। श्रीमत क्या है? दुनिया की ऊंचे से ऊंची मत है। जिस मत पर चलने से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बनते हैं, जिस श्रीमत पर चलने से हम 21 जन्मों का भाग्य प्राप्त करते हैं, अविनाशी सुख शांति का वर्षा प्राप्त करते हैं, तो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण धारणा है श्रीमत। बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा, दादी ने कहा, ये सब हमारे लिए श्रीमत है। निमित्त का आदेश है, क्योंकि ये हमारा यज्ञ एक संसार परिवर्तन की बहुत अच्छी रूपरेखा है, एक बहुत बड़ा व्यवस्था चक्र है। बाबा ने निमित्त आत्माओं की महत्ता को बताते हुए कहा, जो बात के द्वारा निमित्त बने हुए हैं, अगर हमें लगता है कुछ ठीक नहीं है तो उनको ठीक करना वो बाप का काम है, भगवान जिसके लिए गारंटी लेता है। क्यों बाबा का यज्ञ है? श्रीमत में हमारा बहुत गहरा विश्वास। मम्मा को तो मैं साकार में नहीं मिल पाई हूं, मम्मा की बातों को सुनते हुए, मम्मा की धारणाओं के लिए जीवन में बहुत गहरा प्यार है, लेकिन साकार बाबा को तो मैं मिली थी। और जिस दिन से यज्ञ में जन्म लिया, श्रीमत को समझा, तो मैं अहमदाबाद से हर समय छोटी मोटी बातों की निर्णय के लिए पांडव भवन पहुंच जाती थी, बाबा से राय लेती थी। बाबा का निर्णय आखिरी निर्णय रहता था और उसी आधार पर जीवन में आगे बढ़ती थी। और उसका फल जीवन में बहुत अच्छा अनुभव किया है। हालांकि श्रीमत पर चलना एक बहुत बड़ी ऊंची बात है, मैं एक अपने जीवन का अनुभव आपको सुनाना चाहूंगी। मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी जब ज्ञान में आई, और एनसीसी में अंडर ऑफिसर थी। दिल्ली की 26 जनवरी की परेड में जाने का मेरा सिलेक्शन हुआ था और टीम लीडर बन के जाने का था। एक मास दिल्ली जाने का था, तो मुझे हुआ मैं बाबा से मिल करके, बाबा से पूछ करके फिर प्रोग्राम बनाऊंगी। तो मैं सीधा पांडव भवन पहुंच गई, पहुंची, बाबा से मिली। उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी उस समय, 18 साल की उम्र थी, छोटी। बाबा से मिली, बाबा को कहा, बाबा मुझे ऐसे ऐसे दिल्ली जाने का है, तो मैं एक मास कहाँ रहूंगी और मेरे खान पान की धारणा का क्या होगा? तो बाबा ने एकदम से कहा, अच्छा बच्ची तुम्हारे को ड्रिल करना आता है क्या? मैंने कहा हाँ बाबा। तो अच्छा एक काम करना, उस समय हमारी एक लच्छू बहन थी, तो बाबा ने कहा लच्छू बच्ची इधर आओ। तो हम तीन बहनें आए थे उस समय, तो बाबा ने कहा देखो ये तीनों बच्चियों को पहरे वाले का नया ड्रेस दे दो, और आज रात्रि को ये बच्चियां रात्रि क्लास में परेड करके दिखाएगी। हम तो बहुत खुश हो गए, अपने को कोई अप्रिशिएट करेंगे मोटिवेट करेंगे तो खुश तो हो जाएंगे। हमको ड्रेस मिला, हम लोगों ने मतलब प्रैक्टिस की और छोटे हॉल में परेड किया, और परेड करके बाबा को सैल्यूट भी दिया। बाबा ने बहुत महिमा की, फिर टोली बोली भी खिलाई और कहा अच्छा बच्ची अगर तुम्हारे जैसी बच्चियां रूहानी ड्रिल करना सीख जाए तो बाबा का नाम बाला हो जाए। तो बाबा ने समझो ये कहा, खैर आज वो हमारे जीवन के लिए वरदान हो गया है। फिर रात्रि क्लास था, सब अपने कमरे में चले गए, मैं भी अपने कमरे में गई, पर मेरे को नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? बाबा ने ये तो जवाब नहीं दिया कि दिल्ली में कहाँ जाऊंगी और खाने पीने का क्या होगा। बाबा ने इस बारे में तो अभी भी कुछ कहा नहीं। फिर सुबह हुई, जैसे ही मुरली क्लास पूरा हुआ तो फिर मैंने ब्रह्मा बाबा का हाथ पकड़ लिया, और बाबा का हाथ पकड़ के बाबा की चैम्बर में चले गए। बाबा बैठे, मैं बैठी। फिर मैंने कहा बाबा आपने ये तो बताया ही नहीं कि मैं दिल्ली में कहाँ जाऊंगी और भोजन आदि का क्या होगा। तो बाबा मेरे सामने देखते रहे, दृष्टि दिया, फिर मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा बच्ची बाबा समझता है तेरे जैसी बच्ची एक मास का टाइम वेस्ट करेंगी क्या? बस बाबा का ये कहना, और मैंने उसी घड़ी बाबा को बोला बाबा अगर आप नहीं चाहते हैं मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बाबा को बोल दिया आप नहीं चाहते मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये मेरे लिए उस समय बहुत बड़ा त्याग था, क्योंकि दिल्ली जाना और कितनी तो उसमें अचीवमेंट होती है, कितनी क्रेडिट की बात होती है। पर मैंने बाबा को बोल दिया ठीक है बाबा आप मना करते मैं नहीं जाऊंगी। दो दिन में वहां यहाँ ही थी पांडव भवन में, तो बाबा हमको देखते रहते थे। फिर हमारी दादी कुमारका जी बॉम्बे से आई थी, तो बाबा ने दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरे को बुलाया, ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्ची इधर आओ, देखो ये कुमार का बच्ची आई है, अभी वो सारे भारत के टूर पर जा रही है, तुम्हारे को जाना है तो बाबा भेज सकता है तेरे को और वेदांति को, दोनों को भेज देंगे। वेदांती बहन हमारी बड़ी बहन है जो अफ्रीका में बाबा की सेवा पर है, तो बाबा भेज सकता है। हमने कहा हाँ बाबा अगर आप कहेंगे तो हम जाएंगे। तो कहा जा कुमार का बच्ची से रूट ले लो, टिकट बनवा के फिर आ जाओ। वैसे तो बहुत बंधन था पिताजी का, लेकिन उनको भी ये थोड़ा कम पसंद था कि मैं दिल्ली जाऊं। तो मुझे मालूम था कि दिल्ली के बदले ये टूर पर जाने की परमिशन मिल जाएंगी, और फादर रेलवे में स्टेशन मास्टर थे तो फर्स्ट क्लास के पास तो यूं ही मिलते थे। हम अहमदाबाद आए, रूट बनाया, टिकट बनाई और फिर एकदम जाने की तैयारी करके दादी जी के साथ, दादी कुमारका जी के साथ उस समय जितने सेंटर थे, जयपुर, आगरा, दिल्ली, उदयपुर, कानपुर, लखनऊ, बंबई, जो भी सेंटर थे वहां टूर पर जाने का ब्रह्मा बाबा ने प्रोग्राम बनाया और बाबा ने सभी सेंटर पर लेटर डलवा दिया, दो हंसों का जोड़ा आ रहा है। और इन दोनों बच्चियों का अनुभव बहुत अच्छा है, इनके अनुभव की क्लास रखना। अब आप देखिए आज हमारे जीवन की ये कितनी बड़ी संपत्ति हो गई। ब्रह्मा बाप के तुरंत बाद जो यज्ञ के निमित्त बने, इतनी बड़ी दादी जी के साथ 21 दिन रहने का, साथ साथ मुसाफरी करने का, अंग संग रहने का, जीवन का ये कितना बड़ा सौभाग्य मिला। लेकिन ये कब मिला? श्रीमत की आज्ञा का पालन। अगर उस घड़ी ब्रह्मा बाबा ने कहा और मैंने उस बात को स्वीकार नहीं कर लिया होता, मैंने थोड़ा भी इधर उधर किया होता, तो मुझे ये जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली वो मिलेगी? वो नहीं मिलती। बड़ों के डायरेक्शन में, बड़ों के द्वारा मिलने वाली श्रीमत में क्या प्राप्ति है वो हमें मालूम हो या ना हो, लेकिन ये हमारा मर्जी व जन्म है। हम जीते जी भगवान के बने हैं, जीते जी मरकर भगवान के बने हैं और इसीलिए अगर श्रीमत को समझा कौन कह रहा है, तो आज्ञा पालन की शक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी। कौन कह रहा है बस इतना दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए, फिर बुद्धि तर्क वितर्क नहीं करेगी, फिर बुद्धि उल्टा सुल्टा नहीं सोचेगी। तो श्रीमत की परख और मूल्य तीसरी बात है आज्ञा पालन के लिए। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। ब्रह्मा बाबा के पूर्व जीवन में भी आप सभी ने पढ़ा होगा कि गुरु के पुकार को काल का पुकार समझा था। और घर में छठी का प्रसंग होते हुए भी पहला न्याय गुरु के पुकार को दिया। और सर्वशक्तिमान बाप की एक झलक पर, इशारे पर नष्टो मोहा ऐसे जो परिवार स्थूल संपत्ति सहित इतने नष्टो मोहा जो बलिहार हो गए, भले हम गृहस्थ में रहते, बाबा भी गृहस्थ में था, भले आज हमारे से घर बार नहीं छुड़वाते हैं, लेकिन अगर हम घर गृहस्थ में रहते हुए नष्टो मोहा स्थिति में रहेंगे तो हमारे में आज्ञा पालन की शक्ति आएगी। क्योंकि पारिवारिक जीवन में कई प्रकार की जिम्मेवारियां रहती हैं, लेकिन जिम्मेवारियां होते हुए ये हिसाब याद रखना है कि ब्रह्मा बाप जो सृष्टि का आदि पिता, उनके पर भी सब जिम्मेवारियां थी, घर गृहस्थ भी थे, लेकिन जब ब्रह्मा बाप अपने को ईश्वरीय शक्ति और युक्ति के आधार पर भगवान का माध्यम बन पाया तो क्या हम ईश्वर कृपा, ईश्वर वरदान, ईश्वरीय शक्ति के आज्ञा पालन के आधार पर जहां है, जिस शहर में है, जिस गांव में है, जिस स्थान में है, जिस सेवा केंद्र पर है, हम भी तो ऐसे ही आज्ञाकारी निमित्त माध्यम बन करके परमात्मा कार्य में आधार मूरत बन सकते हैं। और बनना ही है, भगवान ने सिलेक्ट किया है, एक एक की विशेषता को देखते हुए सिलेक्ट किया है, और हम भी भगवान की सिलेक्शन पर खींचे हुए आए हुए हैं, तो बनना ही है, हम ही बने थे और हमने ही किया था और हम ही करेंगे। तो तीसरी बात है, आज्ञाकारी बनने के लिए नष्टो मोहा की स्थिति चाहिए। और चौथा, ये याद रहना चाहिए, ये हमारा मर जीवा जन्म है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं, इस जन्म के अंदर ये हमारा दूसरा नया जन्म हुआ है, अलौकिक जन्म हुआ है, और इस अलौकिक जन्म के नाते हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हुए हैं, और दूसरे जन्म के हिसाब से ब्राह्मण कुल के हिसाब से हमारे पर जो फर्ज अदाई है उसके लिए भी आज्ञाकारी बनकर चलना ये एक बहुत आवश्यक कार्य है। आज हमें यज्ञ से बहुत ही आदेश मिलते हैं, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, यज्ञ के द्वारा मिलने वाले डायरेक्शन को हर कोई प्यार से पालन करता है, दादी का बुलावा है, आबू का बुलावा है, यज्ञ का बुलावा है, सेवाधारियों की आवश्यकता है, यज्ञ में बड़े बड़े कार्य होते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, बाबा किनों के द्वारा संपन्न कराते हैं, बच्चों के द्वारा, और किन बच्चों के द्वारा संपन्न होती है? आज्ञाकारी बच्चों के द्वारा। तो ये आज्ञाकारी की धारणा वो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन गुण है, वैल्यू। और अंत तक, अंतिम श्वास तक मुझे इस आज्ञाकारी की धारणा में नंबर वन होके चलना है। ये हमें स्वयं को दृढ़ता से पक्का कराना है। फिर आज्ञाकारी के साथ दूसरा है ईमानदार। दुनिया में ईमानदारी, रुपये पैसे हिसाब किताब लेना देना, इसमें ईमानदारी को महत्व रूप से देखा जाता है। वो तो है ही है, लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं, उनों के लिए ये ईमानदारी किस प्रकार की होनी चाहिए? हमारी संपत्ति है संकल्प, स्वास्थ्य और समय। कहा गया है ब्रह्मा बाप ने संकल्प से सृष्टि की रचना की। आज लोगों को भी आश्चर्य होता है कि पता नहीं ये ब्रह्मा कुमारियों का कारोबार कैसे चलता है, मालूम नहीं चलता है। कोई फी नहीं, कोई डोनेशन की बात नहीं हो रही है, कोई कुछ कह नहीं रहा है, उन्हों को क्या परिवार मालूम कि ये कितना बड़ा परिवार है। कैसे चल रहा है बाबा का कारोबार? संकल्प की सिद्धि के आधार। बाबा बार बार हम लोगों को संकल्प पर इशारा कर रहे हैं, व्यर्थ संकल्प से मुक्त होने लिए कहते हैं, व्यर्थ को बचाओ कहते हैं, क्योंकि ये संकल्प ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए हमें बहुत ईमानदार बनना है। हमें शुद्ध संकल्प, समर्थ संकल्प, सकारात्मक संकल्प, दृढ़ संकल्प, शुभ भावना और शुभकामना के संकल्प में ही हमारी जीवन व्यतीत करनी है। ये ईमानदारी है। अगर संकल्प व्यर्थ, नकारात्मक, संशयात्मक, डाउट्स के गए हुए, तो ये हमारी ईमानदारी में फर्क पड़ जाता है। संकल्प ही हमारी संपत्ति। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा के जीवन में, मम्मा के जीवन की धारणाओं को देखते हुए, कैसे मम्मा बाबा ने समय और संकल्प को पैसे की तरह खर्च किया है, उससे ज्यादा मूल्य दिया है, ब्रह्मा बाबा सुबह की मुरली भी सुनाते थे, रात्रि क्लास भी कराते थे। एक बार बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो भी रात्रि को जाग करके मुरली लिख करके देते थे। क्यों? कि अगर उस तारीख की मुरली नहीं जाएंगी तो बच्चों को संकल्प उठेगा कि क्या है, मुरली क्यों नहीं आई। बच्चों का सोच ना चले, व्यर्थ सोच ना चले, उसके लिए भी बाबा इतने सावधान थे। शिव बाबा का रथ थे ब्रह्मा बाबा ने। बाबा के हर समय के शिव बाप के संकल्प को भी कैच करना, और ब्रह्मा बाप के द्वारा शिव बाबा ने बच्चों को भी टच किया, और ब्रह्मा बाप के द्वारा शिव बाबा ने बच्चों को कई प्रकार के संकल्प की अनुभूतियां कराई। साकार बाबा के समय का मेरा एक अनुभव है। जिस समय हम आए, 1965-66 की बात है, मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दिवाली के आसपास का टाइम था, तो उस समय अमृत वेला ऐसे संगठन में नहीं होता था, हर एक अपनी अपनी रीति करते थे। बाबा भी अपने कमरे में किया करते थे। तो मेरे को दिल में आया कि हमको बाबा की दृष्टि मिले, अमृत वेला बाबा हमको दृष्टि दे करके योग कराएं, तो हम और वेदांती बहन दोनों थे। मैंने वेदांती बहन को कहा, अभी ब्रह्मा बाबा को तो हम ये बात कैसे जाके कह सकते हैं, चलो हम शिव बाबा को बोलेंगे, शिव बाबा सुन लेगा। तो जनवरी की ठंडी थी, हमने सुना था बाबा 3:15 बजे उठ के अपने कमरे में योग करते हैं, तो 2:30 बजे बाबा के कमरे से, जहां हमारे निर्वैर भाई साहब का कमरा है वहां पांडव भवन, वहां बैठ गए, जहां से बाबा के कमरे की लाइट दिखाई पड़ती थी। तो 2:30 बजे उठ के हमने ये लिटरली संकल्प बोलना शुरू किया, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहो हमें दृष्टि दे करके निष्ठा कराएं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहो हमें दृष्टि दे करके निष्ठा कराएं, ऐसा संकल्प भेजते रहे। अब क्या हुआ, जैसे ही बाबा मुरली क्लास में आए, ब्रह्मा बाबा आते ही बाबा ने गुड मॉर्निंग करते हुए कहा, बच्चे बाप दादा को संकल्प आया है, कल से अमृत वेले 4:00 बजे बाप दादा बच्चों को निष्ठा कराएगा। अब बताओ, दिल के शुद्ध प्यार से हमने शिव बाबा को बोला, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को टच किया, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से स्वयं शिव बाबा ने दृष्टि देकर के निष्ठा कराई। संकल्प हमारी संपत्ति, और संकल्प से ही हर एक कार्य संपन्न होता है। हमें अपने संकल्पों के ऊपर बहुत पहरा रखने की जरूरत है। और वो तब रख सकेंगे जैसे बाबा मम्मा स्वयं दिनचर्या पर एक्यूरेट चलते रहे, बच्चों को चलाते रहे। हम अगर दिनचर्या पर चलने की कला सीखेंगे तो हमारा दूसरा मूल्यवान खजाना है समय। 24 घंटे से 25वां घंटा होने वाला नहीं, समय तो वो ही रहेगा। हमें समय का आयोजन करके चलना पड़ेगा। जब मनुष्य मरने पर होता है, थोड़ी घड़ी और जिंदा रह जाए, थोड़े सांस और चल जाए, उसकी आखिरी इच्छा का मालूम पड़ जाए, उसके लिए लोग कितने लाखों रुपयों हॉस्पिटल में खर्च करते हैं ने? और जब स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं, तब उन्हें वो सेकंडों की कीमत होती है। समय हमारा खजाना है। हमें बड़ी ईमानदार होके अपने सेकंड 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 का हिसाब रखना पड़ेगा। ये अभी हमारी जीवन, भगवान की जीवन। हमने बाबा को कह दिया है, बाबा तू मेरा और मैं तेरी, तो हमारा सब कुछ किसका हो जाता है? बाबा का हो जाता है। तीसरा खजाना है श्वासोश्वास। हमारे ये जो सांस है वो भारी है कि लाइट है? भारी है जरूर, कोई चिंता है, फिकर है। लाइट है, हम खुश हैं। भारी पुरानी दुनिया की निशानी है, लाइट नई दुनिया की खुश निशानी है। हमें डबल लाइट बनना है, हमें डबल लाइट बनाना है। आप जो भी खर्च कर रहे हैं, किस लिए खर्च कर रहे हैं? खुशियों के लिए। संसार में मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, घूमने जाते हैं, साधन बसाते हैं, किस लिए? खुशी के लिए। खुशी खजाना है और वो खजाना हमें भगवान के द्वारा मिला है। ईमानदार, हमारी ईश्वरीय कापारी खुशी कम ना हो, हमारा उमंग उत्साह जरा भी कम ना हो। दिनों दिन हमारी खुशी बढ़ती जाए, उमंग उत्साह बढ़ता जाए, कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा बढ़ती जाए, हमारे श्वासोश्वास उसी में सफल होते जाए। ईमानदार, संकल्प, समय और श्वास, ये हमारी अविनाशी संपत्ति है। अभी हमारे साथ हैं, उसके प्रति ईमानदार रहना है। दुनियावी मूल्यांकन तो ठीक है, वो तो रखना ही है, वो तो दुनियावी लोग भी रखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्तित्व होने के नाते हमारी ये ईमानदारी, वफादार। बाबा को चाहिए, हम अभी एक बाप दूसरा न कोई, चाहे जितने संबंध बाबा से रख लो, माता पिता गुरु बंधु भाई स्वामी सखा मित्र साजन सर्जन, जो भी संबंध हम बाबा से जोड़ ले, क्योंकि जीवन में नवीनता चाहिए, वैरायटी चाहिए। लौकिक जितने संबंध है उस संबंधों को ट्रांसफर करने पड़ेंगे, क्योंकि हम उसी प्रकार से माहिर हो गए। बाबा कहते मेरे साथ हर संबंध जोड़ के देखो, फिर देखो मैं निभाता हूं नहीं निभाता। इतना मीठा बाबा, इतना भला और भोला बाबा है, और बाबा ने मिलने की विधि कितनी सिंपल दे दी है। बस इतना ही याद करना है, मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा साथी बाबा मदद आ जाओ, बस इतना ही कहना है। जब वो मदद देने बंधा हुआ है, हमें और कहां नजर करने की जरूरत ही नहीं। क्यों बाबा कहते हैं, देखो ये इंद्रियां 2500 साल से इतनी चंचल हो चुकी हैं, अगर दृष्टि गई तो वृत्ति जाएगी, वृत्ति गई तो स्मृति जाएगी, स्मृति में आया तो स्वरूप बदल जाएगा। अब बाबा तो स्वरूप के द्वारा सेवा कराना चाहता है, कहां भी देह के संबंधों में दृष्टि का जाना माना वृत्ति का जाना, वृत्ति का जाना माना स्मृति का जाना, और स्मृति का जाना माना चेहरा बदल जाना। ये फिक्स है, ये यूनिवर्सल कायदा है, कोई कुछ नहीं करता है उसमें। इसलिए कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा बोलता है। अब बाबा कहते हैं कि चेहरे और चलन द्वारा सेवा करो। अगर हम चेहरे और चलन द्वारा सेवा करना चाहते हैं तो ये वफादारी चाहिए, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा जानता है, बाबा हर मुरली में हमें सूचना देता है कि माया तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, तुम्हें बहुत संभल करके चलना है। बाबा जानता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि माया के वश हो जाना है। बाबा इसलिए कहता है कि हम हमेशा अलर्ट रहे कि हम माया जीते जगत जीत हैं, हम मन जीते जगत जीते हैं। बाबा माया की परख कराता है, पहचान देता है कि हम माया जीत रहे। बाबा कोई डराने के लिए माया का परिचय नहीं देता है, हमको डरपोक नहीं बनना है, बाबा हमें अलर्ट करता है कि बच्चे ये माया की पहचान है और तुम माया के संसार में बैठे हुए हो, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारे साथ। सर्वशक्तिवान का हाथ जिसके हाथ हो उससे और क्या चाहिए, ऐसा बाबा हमको मिला है। तो प्यारे बाबा को हम ये सबूत दे कि बाबा प्यारी माँ समान और ब्रह्मा बाप समान हम आपको आज्ञाकारी बच्चे का सबूत अवश्य ही देंगे। ओम।